सूरत ममता है ना, बहुत प्यारी सूरत है। सुलह हुदैबिया में कुछ शरायत थी, उन्हीं के मुतल्लिक ये सूरत है। और इस सूरत का जो बुनियादी थीम है वो ये कि अल्लाह के दुश्मनों से दोस्ती ना करो। इसमें एक वाक्य भी आएगा, आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ु अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अब एक एक लफ्ज़ को अपने दिल पे लें, ए लोगो जो ईमान लाए हो, बताइए ले आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर सुनिए। अगर तुम मेरी राह में जिहाद के लिए और मेरी रजा जोई की खातिर वतन छोड़कर घरों से निकले हो, तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ। तुम इनके साथ दोस्ती की तरह डालते हो, हालांकि जो हक तुम्हारे पास आए इसको मानने से वो इनकार कर चुके। और इनकी रविश यह है कि रसूल को और खुद तुम को सिर्फ इस कसूर पर जिला वतन करते हैं कि तुम अपने रब अल्लाह पर ईमान लाए हो। तुम छुपा कर इनको दोस्ती के पैगाम भेजते हो, हालांकि जो कुछ तुम छुपा कर करते हो और जो ऐलानियां करते हो, हर चीज को मैं खूब जानता हूँ। जो शख्स भी तुम में से ऐसा करे वो यकीनन राह-ए-रास्त से भटक गया। इनका रवैया तो यह है कि अगर तुम पर काबू पा जाए तो तुम्हारे साथ दुश्मनी करें और हाथ और जुबान से तुमको तकलीफ दें। वो तो ये चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ। क़यामत के दिन ये तुम्हारी रिश्तेदारियां किसी काम ना आएंगी, ना तुम्हारी औलाद। उस रोज अल्लाह तुम्हारे दरमियान जुदाई डाल देगा और वही तुम्हारे आमाल का देखने वाला है। खातिब बिन अबी बलता के बारे में आते हैं। नबी सल्लम ने जब देखा कि मक्का वालों ने सुलह हुदैबिया की शरायत तोड़ दी, तो अहद शिकनी की सजा देने के लिए आपने एक लश्कर तैयार किया और मक्का की तरफ कूच किया। अल्लाह ताला से आपने एक दुआ की कि अल्लाह मेरे मक्का पहुंचने तक कुफार को खबर न देना, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि मक्का में खून बहे और लोग मरे और खाना काबा की हुरमत पामाल हो। अल्लाह के नबी निकले, लेकिन एक सहाबी खातिब नबी बलता, उनके बारे में खबर मिली कि एक खत किसी औरत को देकर उन्होंने मक्का के सरदारों के नाम भेजा। वही के जरिए जब अल्लाह के नबी को यह खबर मिल गई, तो आपने हजरत अली और उनके साथ एक और सहाबी को भेजा और कहा कि जाओ, तुम्हें मदीना और मक्का के रास्ते में फला जगह रोखाख का नाम थोड़ा सा इसी तरह से रोखा या रोखाख के नाम पर तुम्हें एक औरत मिलेगी, खत है उसके पास लेकर आओ। हजरत अली अल्लाह के नबी की इंस्ट्रक्शंस लेते हुए निकले, घोड़े को तेज दौड़ाया। दूसरे सहाबी ने कहा जरा थोड़ा आहिस्ता चलाएं, शायद औरत कहीं इधर उधर मिल जाए। हजरत अली ने कहा मेरा ईमान है कि जिस जगह अल्लाह के नबी ने कहा वहां मिलेगी, रोजा खाख नाम था जगह का। और वही हुआ, जब उस जगह पे पहुंचे तो एक औरत को देखा, सारा नाम था उसका। और ये वो औरत थी कि जो गज़वे बदर के बाद मक्का से मदीना आई, ये कहती हुई कि अल्लाह के नबी बड़े बड़े सरदारों को तो आपने मरवा दिया, अबू जहल, उतबा, शहबा, वो तो हमारी महफिलें से जाते थे, तवायफ थी असल में वो, गाती बजाती। कहा अब तो मक्का में कोई कारोबार ही नहीं रहा और मैं उन लोगों को छोड़ आई हूँ, तो मुझे मदीना में जगह दे दे। असल में वो जासूस थी, वो मदीना में रहकर खबरें इधर की उधर भेजती थी। अल्लाह के नबी ने कहा रहो, तुम्हें कौन रोक सकता है, रह लो। ये औरत मिली, हजरत अली ने कहा निकाल, तेरे पास कोई खत है? कहेंगी कुछ नहीं है। कहते को चुपके से खुद ही निकाल दो, वरना हम तुम्हारी तलाशी लेंगे। और उस औरत ने अपने बालों की मिडियों में पिरोया हुआ एक खत निकाल के दिया, कागज के टुकड़े। खोला, वो खत क्या था, एक जंगी राज को डिस्क्लोज करने का जुर्म था, खातिब बिन अबी बलता के नाम उन्होंने लिखा हुआ था। हाँ, खातिब बिन अबी बलता की तरफ कुफारे मक्का अल्लाह के नबी एक लश्कर लेकर आ रहे हैं, अपने बचाव करना चाहो तो कर लो, और मेरे इस खत के बदले में तुम मेरे बच्चे और बीवी जो मक्का में फंसे हुए उनको कुछ ना कहना अगर जंग हो गई। बस ये खत क्या था, निकले वापस लेकर अल्लाह के नबी के पास। हजरत उमर को पता चला, कहा अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दें, मैं जाके खातिब नबी बलता का सर कलम कर दूं, क्योंकि जंगी राज था, किसी मुल्क का कोई राज हो तो उसकी भी सजा हुई। अल्लाह के नबी ने कहा सबर उमर, अभी नहीं, खातिब को बुलाओ। देखिए अल्लाह के नबी में कितना सबर था, तहम्मुल कितना था, ठंडे सुबह के थे, हर हर बात पे गुस्से में नहीं आते थे, मौका देख के बात करते थे, कब प्यार करना है, कब गुस्सा करना है, कब लाड़ देखने और कब दिखाने है। दुआ करें अल्लाह में ये हिकमतें दे दे। जब खातिब आए तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मेरे खिलाफ सबूत तो आपके पास है, लेकिन मैं सच बताऊंगा, आप मुझे माने ना माने, कि ना तो मैं काफिर हुआ ना मेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक टूटा है। मेरा ईमान है कि जब आप फौजें लेकर जा रहे हैं तो फतह आपको ही होगी। ये तो और उनके ईमान की दलील बन गई। میں نے یہ خط صرف مکہ والوں پر احسان کی نیت سے لکھا ہے کہ فتح تو آپ کی ہونی ہے، تو میرے اس خط کا ان کو بتانے سے نہ بتانے سے فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے صرف اس لیے لکھا کہ باقی صحابہ جو ادھر ہیں ان کے بچے بیوی اگر مکہ میں ہیں تو ان کے رشتہ دار بھی ہیں، میرے بیوی بچوں کے سوا وہاں کوئی نہیں، اور اتنا مجھے پتا ہے جب جنگ لگے گی تو وہ مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو سب سے پہلے ماریں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب بھی کسی جگہ جنگ لگتی ہے اس ملک میں رہنے والے مسلمان سب سے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ایک احسان کر دوں ان پہ، میرے بیوی بچے بچے۔ اللہ کے نبی نے ان کی یہ پلی لی، کہا جا خاطب اللہ تجھے معاف کرے، کیونکہ یہ بدری صحابہ میں سے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد کوئی نیکی بھی نہ کرو تو تمہیں جنت دے دی۔ اور واقعی یہ بات ہے، یہاں اب اس تھیم کو بتایا کہ مال اور اولاد اور بیوی بچوں کے لیے اللہ کا کوئی راز توڑتے ہو تو یاد رکھو یہ کام نہیں آئیں گے۔ تو حقیقت ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، بہت سارے لوگوں کی نیکیوں سے رکنے کی وجہ یا تو اولاد کا مستقبل ہوتا ہے یا مال کی محبت ہوتی ہے۔ تو اسی بات کو سامنے رکھے، آگے بھی یہی بات ملے گی کہ تم تو اتنی سی قربانی نہ دے سکے، دیکھو ابراہیم نے کیا کیا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے معبودان سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں، ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ ہائی لائٹ کر لیں، یہ ہے آپ کا میرا سوال جواب اس معاشرے سے جو ابھی تک کفر اور شرک پہ جمع، اور آپ کو قرآن کی روشنی مل گئی۔ اتنا تو کبھی نہ کبھی کہنا ہی پڑے گا آپ کو، ورنہ تو لوگ آپ کو ادھر ہی لے جائیں گے جہاں سے آپ نکل کر آئے تھے۔ تو دو ٹوک فیصلہ ہو تو دوسروں کو بھی سمجھ آ جاتی کہ یہ میری بات نہیں مانیں گے۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے ایگزمپٹڈ تھا، یعنی مستثنا ہے، میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کرنا میرے بس میں نہیں۔ اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی یہ دعا تھی، کیا دعا تھی ان کی؟ ربنا علیک توکلنا والیک نبنا والیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا، آمین تو کہیں آپ بھی، کیونکہ یہ دعائیں آج ہمیں بھی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ اے ہمارے رب، اب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کافروں کے لیے فتنہ کب بنتے ہیں؟ جب وہ دین کو تماشا بنا لیتے ہیں، کھیل سمجھ لیتے ہیں، اور ان کے دین کو دے کر لوگ دنیا میں بھی ان کو ذلیل کرنے لگتے ہیں۔ اس کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ وہ کام جو دین کے نام پہ شروع ہوں اللہ ان کو کھیل نہ بنائے، تماشا نہ بنائے۔ بعض دفعہ رشتے جڑتے ہیں تو اس میں بنیاد دین ہوتا ہے، تو ایسے رشتوں کو اللہ قائم رکھے تاکہ دوسرے لوگ ان پر ہنسے نہ۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ آج ہم مسلمانوں پہ کفار کا ظلم و ستم ایسا نہ بڑھ جائے کہ ہم مسلمان فتنوں میں پڑ جائیں۔ اور اس کے اور بہت سارے معنی ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچا کر اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ روز آخر کا امیدوار ہو، اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہیں۔ اَسَلَ اللَّهُ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، بعید نہیں ہے کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لے لی۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی۔ یہ آیت کیوں نہیں دکھاتے ہم کفار کو؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کہتے کافروں کو مارو، اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو نان مسلم ہیں تمہیں کچھ نہیں کہتے، تمہارے ساتھ انصاف کے ساتھ رہتے ہیں، تم ان سے بالکل جنگ نہیں کرو گے، اور تمہیں گھروں سے بھی نہیں نکالا۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ تمہیں اس بات سے روکتا ہے، وہ تو یہ ہے، وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں۔ دیکھیے یہ جس دور میں آتے اترے تھے نا، وہ ایک ڈائنامک دور تھا۔ ہر گھر میں کچھ تھا، کہیں گھر ٹوٹ رہے تھے اسلام پہ، بیوی مسلمان ہوگی شوہر کفر پہ، کہیں شوہر مسلمان ہے تو وہ ہے، کہیں بچے گھروں سے جا رہے ہیں۔ پورے عرب معاشرے میں نبی کے خلاف جو پروپیگنڈا تھا وہ کیا تھا؟ یہ گھر تڑوا رہے ہیں، इनकी बातों में बच्चे आके माँ बाप को छोड़ रहे हैं। कई दो बहनें एक शख्स के निकाह में थी, इस्लाम ने पाबंदी लगाई, अब एक को तलाक देनी पड़ेगी। इस पे लोग बेचैन हुए। आज भी ऐसा ही होगा। इस्लाम को दीन के तौर पर जब लागू करेंगे तो लोग ऐसे ही शोर मचाएंगे, क्योंकि लोग मुतमईन हैं, गलत काम कर रहे हैं लेकिन इकट्ठे तो हैं ना। जब आप में से एक बच्ची कह देती है अम्मी मैं भाई की शादी पे मेहंदी में नहीं आऊंगी, तो बस देखिएगा फिर फितने जो उठेंगे। अब आप कहते क्या करूं, अब इतनी दूर से शादी पे जा रही हूं तो अब भाई की मेहंदी और उसकी उपटन और चूड़ियां और डांस और खाने पीने में बोलने में ना शामिल कर हो जाऊं, तो फिर क्या होगा? वो कहेंगे देखा ये ऊपर की बातें हैं, ये जब वक्त आता है तो सब ढले जाते हैं। इसके बरक्स अगर आप देखिए कि आप यहां से शादी अटेंड करने कहेंगे, कहीं से भी हो, सबकी नजरें आप पे लगी हैं, किधर है, वो नहीं आई, वो नहीं आई, और सबका मजा किरकिरा होगा। आपने देखा होगा किसी काम पे सबने मिलके जाना हो ना, तो कोई एक आधा ना आए, रास्ते में चला गया, पिकनिक पे जा रहे थे, गाड़ी बदल गई, कुछ हुआ, तो बाकियों को भी उसका ही ख्याल आता रहता है। ये मुझे और आपको करना पड़ेगा। आज के दौर का जिहाद यह है कि झूठ के नाम पर कायम करदा रस्में और रिवाज और नाफरमानी के काम, उससे आप पीछे हो। जब आप निकलेंगे ना तो आपकी माँ अगर वहां होंगी ना, वो तो पूरा वक्त कहते हाय वो बेचारी आई नहीं, हाय इतनी दूर से आई फिर भी शादी में नहीं आई, हाय किधर गई, हाय किधर गई। तो वो बाकी बहन भाइयों का मजाक किरकिरा होगा, फिर वो भी कहेंगे चलो जल्दी घर जाते हैं, अब क्या महफिल लगानी है। ये रंग में भंग डालेंगे, इंशाल्लाह आप देखिएगा ये नुक्ता आगाज होगा तब्दीली का। चंद सालों में अगली शादियों में वो ये चीजें रखेंगे नहीं कि क्या फायदा, बदमजगी पड़ती है। लेकिन जब हम गूंगे शैतान बनकर दिल ना चाहने के बावजूद ऐसी महफिलें अटेंड करते हैं तो खराबी। और इसमें मैं अपनी मौजस माओ को कहूंगी कि जो बूढ़े हो जाते हैं वो बड़े कीमती हैं, उनको लोगों ने लाके स्टेज पे जरूर ही बिठाना होता है। अम्मा जी आप बैठे, आप हमारी इज्जत है, कहते इसलिए बैठूं इस शर्त पे बैठूंगी पहले ये खुराफात खत्म करो। आप मैं ना भी जाए कोई नहीं परवाह करेगा, अम्मा जी ना गई तो बड़ी फिक्र हो जाएगी। और बाज अम्मा है अल्लाह उनको भी हिदायत और जरूरत है, वो हर गलत रस्म में ये सोच के बैठी होती हैं बच्चों की खुशी और इज्जत का मामला, अल्लाह की खुशी और अल्लाह के से इज्जत लेने का मामला पीछे होता है। तो वी नीड टू टेक अ स्टैंड इफ वी वॉन्ट टू चेंज समथिंग, वरना जो कर रहे थे पिछली दो सदियों तीन से अब आगे भी करते रह जाएंगे। और अल्लाह तला से दुआ है कि वो हमारे लिए इस काम को आसान कर दे। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब मोमिन औरतें हिजरत करके तुम्हारे पास आए तो होने की जांच पड़ताल लिया करो, और इनके ईमान की हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर जब तुम्हें मालूम हो जाए कि वो मोमिन है तो इन्हें कुफार की तरफ वापस ना करो। इतनी खूबसूरत आयतें हैं ना तफसीर के नाते से, लेकिन यह हमारा टॉपिक नहीं इसलिए छेड़ नहीं रहे, लेकिन जाके सुन के देखें। इतना खूबसूरत कानून और शरीयत अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता था कि काफरों की औरतें मुसलमान होकर आए तो उनके शोहरों के साथ बेचारों के साथ क्या होगा जिन्होंने हक मेहर दिए हुए। इसी तरह अगर कोई मुसलमान औरत कुफर के पे चली जाती है तो उसके शौहर के साथ क्या होगा जिस बेचारे ने हक मेहर दे के निकाह किया था। ये इसी किस्म की जांच पड़ताल है, जरा सुनिएगा और इंजॉय करें और दुआ करें कि हम इन आयतों को डिटेल से भी पढ़ें बाद में। फरमाया क्या करो, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब मोमिन औरतें हिजरत करके तुम्हारे पास आए तो इनके मोमिन होने की जाँच पड़ताल कर लिया करो, और इनके ईमान की हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर जब तुम्हें ये मालूम हो जाए कि वो मोमिन है तो इनको कुफार की तरफ वापिस न करो, न वो कुफार इनके लिए हलाल है न कुफार इनके लिए हलाल है। इनके काफिर शोहरों ने जो महर इनको दिए थे वो इनको फेर दो, और इनसे निकाह कर लेने में अब तुम पर कोई गुनाह नहीं जब तक कि तुम इनके महर इनको अदा करो। और तुम खुद भी काफिर औरतों को अपने निकाह में ना रखोगे, जो महर तुमने अपनी काफिर बीवियों को दिए थे वो तुम वापिस मांग लो, और जो महर काफिरों ने अपनी मुसलमान बीवियों को दिए थे इन्हें वो वापिस मांग ले। ये अल्लाह का हुक्म है, वो तुम्हारे दरमियान फैसला करता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और वो अलीम भी है और हकीम भी है। वइन्फातकुम शयुम मिन अज़्वाजिकुम, और अगर तुम्हारी काफिर बीवियों के महरों में से तुम्हें कुछ कुफार से वापस ना मिले, फिर तुम्हारी नौबत आए तो जिन लोगों की बीवियां उधर रह चुकी हैं इनको इतनी ही रकम अदा करो जो इनके दिए हुए महरों के बराबर हो, और उस अल्लाह से डरते रहो जिन पर तुम ईमान लाए। इस्लाम से ज्यादा दुनिया को इंसाफ और अदल कोई नहीं दे सकता, हर एक उसका दो, चाहे वो मुसलमान है चाहे काफिर है, उसका हिस्सा दे दो। इसके बाद बैत के कुछ शरायत है, इस पर गौर कीजिएगा कि इस्लाम कितनी कड़ी शर्तें लगाता था इस्लाम की तरफ आने वालों पर। या अय्युहन नबी इज़ा जाअल मोमिनात, ए नबी जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें बैत करने के लिए आए, बैत का हक नबी को होता है या वक्त के उस हुक्मरान को जो मजहब की गद्दी पे भी और सियासत की गद्दी पे जमा हो। चूंकि आजकल ऐसा नहीं है तो आज के दौर में किसी के साथ बैत करने का वो तरीका वो हुक्म नहीं होगा जो अमूमन जगहों पे रखा जाता है। अल्लाह के नबी मुसलमान होने वाली औरतों से बैत लिया करते थे, और कैसे लेते थे आपको पता? हाथ मिलाते होंगे, शेक हैंड, हाथ पे हाथ रख के? नहीं, औरतें पर्दे के दूसरी तरफ बैठती थी, नबी इधर होते थे। कभी एक कपड़ा रख दिया जाता था बीच में, उधर से सिरा वो पकड़ लेती थी, इधर से नबी पकड़ लेते थे। कभी अल्लाह के नबी प्याले में पानी डालते, फिर उसमें अपना हाथ डिप करते, फिर वही प्याला उधर औरत को दिया जाता तो वो अपना हाथ डालती थी। एक मरतबा एक औरत ने अपना हाथ पर्दे के नीचे से दिया तो अल्लाह के नबी ने मुंह फेरा और कहा, औरत अपना हाथ पीछे कर ले, मैं मोहम्मद किसी औरत के हाथ की तरफ देखता भी नहीं। और आज वही मुसलमान औरत जो उस नबी की बेटी होने का दावा करे, वो गैरों से शेक हैंड करती फिरे। और आज वही उम्मत के मर्द जो गैर औरतों से शेक हैंड करें कि ये मेरी कुलीग्स हैं, ये पार्टी है, पीसी में बैठे हैं, बिजनेस ट्रिप पे, बड़े बड़े नाम रख लीजिए, जिसका किसी मर्द ने औरत का हाथ छुआ, ये जलता हुआ अंगारा हाथ में रखना है। अल्लाह ताला माफ, सबसे बदतरीन किस्म होगी किसी भी बेहयाई या मॉडर्निज्म की के टच करना। टचिंग इतना बड़ा गुना है, कहाँ पर चूड़ियों वालों के हाथों में हाथ डालकर चूड़ियाँ भरी जाएं और देवरों के हाथों पे हाथ मार के भाभियाँ गाएं और बातें करें, क्या करते हैं हम आज। पहले कहते थे मेहंदियों पे लड़कियां डांस करती हैं, गानती हैं, चलो भी खुशियों के नाम पे कर लो, बंद कमरों में करती हैं, ऐसा ऐसा वो खुल के बाहर आया। और अब जब तक लड़कियां लड़के ना नाचें, बात ही नहीं। और मजबूर भी बहुत है, क्योंकि जो गाना वहां फिट करना है उसमें लड़के लड़के ही गाते हैं, अब मजबूरी है उस फिल्म को पिक्चराइज भी तो करना है। वल्लाह ही आज क्या हमारी शादियां पिक्चराइज नहीं हो रही? शादी सेलिब्रेट कहाँ होती है? पूरी पिक्चराइज, वही सारा माहौल बनाते हैं जो फिल्मों में बना होता है। आज जोड़े भी दिखाने हो दुल्हनों के, तो फिल्मों के नाम देखे गए तो वो जोड़ा बना दें जो फलां दुल्हन ने पहना है। तो आ करिए अल्लाह उम्मत को कोई काम दे, फारिक लोग यही कुछ तो करेंगे बेचारे, जब आप मसरूफ कर देंगे, किसके पास होश है फिल्म देखने की और उस जोड़े को बनाने की और उसको पहनने की? अल्लाह हमसे ये सिखा रहे हैं, रिश्तों के जिहाद करने पड़ेंगे, दीन का काम करना और रिश्तों को साथ निभाना, ये जिहाद से कम नहीं है। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां कर दे। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि बैत करने वाली औरतों से आप क्या पूछते, और इस बात का अहद करें कि वो अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक ना करें, ना चोरी करेंगी, ना जिना करेंगी, अपनी औलाद को ना कत्ल करेंगी, अपने हाथ पांव के आगे कोई बुहतान खड़ कर ना लाएंगी, और किसी अमरे मारूफ में तुम्हारी नाफरमानी ना करेंगी। तो इनसे बैत ले लो और इनके हक में अल्लाह से दुआ मगफरत करो, यकीनन अल्लाह ताला दरगुजर फरमाने वाला और रहम करने वाला है। और आखिर में वही हुक्म दे दिया जो इस सूरत का थीम था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ क़ौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इन लोगों को दोस्त ना बनाओ जिन पर अल्लाह ने गज़ब फरमाया और जो आखिरत से इसी तरह मायूस हैं जिस तरह कब्रों में पड़े हुए काफिर मायूस हैं। कितनी प्यारी बात कह दी, जो लोग अल्लाह के गजब का शिकार हो गए, क्या आप ऐसे लोगों से दोस्तियां करेंगे? 3 सेकंड तक इस आयत पे गौर कीजिए और आज उम्मत मुस्लिमा के जवाल की बहुत बड़ी वजह आपको इसमें समझ आ जाएगी।